ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम है जहां रंग मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर है अंजुम हेरल्ड गिल। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके में बिलखसूस जलजिले से कई अमवात उन गई हैं, कम अज़ कम 10 अफराद के हलाक होने और 100 से ज़्यादा अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला मिल रही हैं। और कुछ देर पहले कन्फर्म किया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह ने। इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। जब तक हमें डेवलपमेंट्स आ रही हैं, मज़ीद ख़बरें सामने आ रही हैं, तब तक हम इसको तीसरे सेगमेंट में तफसील से बात करेंगे। पहले ही से मैं गुफ्तगू होगी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का 74वां इजलास, अब उसका बाकायदा आगाज़ हो गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले इस पर खिताब किया है और हम इस बैकड्रॉप में ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान का वफ्द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में यहाँ पर मौजूद है और गुज़श्ता रोज़ काफ़ी मसरूफ़ दिन था, आज भी काफ़ी उनकी मसरूफियात हैं। कश्मीर मिशन नाम दिया गया है प्राइम मिनिस्टर के इस विज़िट को, तो इस कश्मीर मिशन में अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे भारत की जानिब से पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है भारत की फ़ौज के सरबराह की जानिब से कि बालाकोट के अंदर एक बार फिर अस्करियत पसंदों के जो ठिकाने थे उनको मुतहरक कर दिया गया है। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहा है। प्रोग्राम के तीसरा हिस्सा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि पाकिस्तान में जलजिला ना सिर्फ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके बिलखसूस इससे मुतासर हुए हैं बल्कि बाकी शहरों में भी ये शिद्दत से जलजिला महसूस किया गया है। अब तक ऑफिशियली बताया गया है कि 10 अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे शुमाली वज़ीरिस्तान, जहाँ पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार और समेत कम से कम 6 अफराद जो हैं वो हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए हैं। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि ये एक पेट्रोलियम की तलाश में, तेल की तलाश में मसरूफ़ कंपनी के एहलकारों पर फायरिंग की गई है। सो इस एतबार से हम गुफ्तगू करेंगे। चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। 74वां अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, उसका बाकायदा आगाज़ हो गया है और अब से कुछ देर पहले अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उसे खिताब किया है। अब अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उस जनरल सेक्रेटरी गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी मुल्कों के सरबराहान इसमें शिरकत कर रहे हैं, काफ़ी ममालिक से, यूरोप से और चाइना से मुख्तलिफ़ लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है और बड़ी अहमियत का हामिल ये इजलास समझा जा रहा है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान की क़यादत ये कह रही है कि उनके लिए ये इजलास कश्मीर मिशन है। पाकिस्तान की ख़ुसूसी मंदूब या एम्बेसडर अक़वामे मुत्तहिदा के अंदर डॉक्टर मलिहा लोधी, उन्होंने इसको कश्मीर मिशन का नाम दिया और प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान उन्होंने भी ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर करार दिया और यहाँ आने से पहले ही ये बावर कराया जा रहा था कि वो इस दौरे में कश्मीर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। और अक़वामे मुत्तहिदा के बारे में जनरली भी ये कहा जाता है कि जनरल असेंबली में तो ऑफ़ कोर्स सारे मुल्क अपने अपने नुक्ते नज़र आके बयान करते हैं, लेकिन साइड लाइन्स मीटिंग्स जो हैं वो बहुत अहम हुआ करती हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तफसीली वन ऑन वन मुलाकात हुई, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ उनकी मुलाकात हुई, तुर्क प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई, इसके अलावा IMF के वफूद से गुफ्तगू हुई, काफ़ी मसरूफ़ दिन उन्होंने गुजारा। बात हम करते हैं कि मुख्तलिफ हवालों से अब तक क्या मैसेज पाकिस्तान की तरफ से गया है। हमारे साथ इस पे एनालिसिस के लिए मौजूद है तारिक चौधरी साहब, सीनियर साफ़ी कलम निगार, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फरत आसिफ, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेसी, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं, और हमारे साथ इस्लामाबाद से होंगे यासिर रहमान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और अपने टेलीविजन प्रोग्राम के होस्ट भी हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। तारिक चौधरी से अभी रब्ता नहीं हो पा रहा, गलबन वो इस वक्त जनरल असम्बली के अंदर मौजूद हैं। तो फरत आसिफ हैं और यासिर रहमान, ज़रा पहले मीडिया के हद तक बात कर लेते हैं। यासिर, ये बताइएगा कि कवरेजेज यहाँ से हो रही हैं, और अब तो खैर ये दुनिया ऐसी है कि जिस रफ्तार से न्यूयॉर्क के अंदर बैठे हुए, बल्कि उस हॉल के अंदर बैठे हुए आदमी को इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी पहुँच रही है। कैसे एनालाइज़ किया जा रहा है मीडिया की सतह पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे को और उनकी जो खास तौर पे गुज़श्ता रोज़ इंगेजमेंट्स रही हैं और कश्मीर के ऊपर जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है?
जी असद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका के इस प्रोग्राम में मदद करने के लिए। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका जाने से पहले ये बात कही थी, बल्कि जब आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अब मैं आज़ाद कश्मीर का जो है ये जो केस है इसके लिए सफ़ीर हूँ पूरी दुनिया में, ये कश्मीरी कौम जो है जिन्होंने इसको रेस्ट अश्योर होना चाहिए। और उसी सिलसिले की कड़ी है कि वज़ीर आज़म पहले MBS से मिले, उससे उसके बाद फिर वो अमरीका आए और अमरीका से मुलाकातों का सिलसिला, अगर आप सीरीज ऑफ मीटिंग देख लें या जिन फॉरम्स पर तबादला ख्याल किया गया है, इसमें बुनियादी तौर पर जितने भी जिस नौयत की शख्सियात से उनकी मुलाकातें रही हैं खास तौर पे, वो ये जाहिर करता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ऊपर इंसानी हकूक की जो पामालियां हो रही हैं भारत जो कर रहा है उसको हाईलाइट करने के हवाले से, चाहे वो लेजिस्लेटर्स हों अमेरिका के, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, चाहे वो जो है CFR हो, वहाँ पे भी अगरचे उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से बात की, अमेरिका और अपनी इत्तेहादी होने के हवाले से बात की, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने कश्मीर का जो मामला है, मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है या इंडियन हेल्ड कश्मीर की जो सूरत हाल है वहाँ भी तस्करा किया है। तो ये उम्मीद की जाती है कि उनकी जो 27 सितंबर में खिताब से पहले जो मुलाकातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस की हामिल होंगी, और हो सकता है हमें किसी हेड ऑफ स्टेट या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी हेड ऑफ स्टेट की जो खिताबात है उसमें कश्मीर के हवाले से जो लाइक माइंडेड जो इस मामले में किन पाकिस्तान की हिमायत करते हैं या इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले से सोचते और समझते हैं कि ये मामला जो है इंटरनेशनल फोरम पे उठाया जाना चाहिए, उस पर कश्मीर के मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले से उनकी खिताबात में शायद हमें कुछ इस सिलसिले में कुछ अक्स नजर आए, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और खासतौर पर जिस तरह से बोरिस जॉनसन से मुलाकात हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि और भी सुदूर और नायब सुदूर से मुलाकातें मुतवक्के हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंस है, पाकिस्तान में भी इसको बड़ी कदर की निगाह से इस हवाले से देखा जा रहा है कि जिस मकसद के लिए वज़ीर आज़म गए हैं वो मकसद हमें एटलीस्ट उनकी तरफ से मैसेज कन्वे होता नजर आ रहा है।
जी हमारे साथ रहिएगा फरहत आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान खान के इस दौरे को अगर मिशन कश्मीर के पैराए में देखा जाए तो किस हद तक दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने में वो कामयाब हुए हैं, और क्या जैसे यासिर कह रहे हैं कोई रिफ्लेक्शन मिल सकता है किसी भी लीडर के एड्रेस से जब वो अक़वामे मुत्तहिदा से बात करें? हालांकि इम्कान इसके महदूद हैं कि अगर वो ऑफिशियल अपनी स्पीच में कश्मीर का तज़किरा करें, लेकिन अगर कोई जैसे ओपिनियन डिवेलप करना होता है या एक पिक्चर सामने रखनी होती है और कन्विंस करना होता है तो हो सकता है बाद में इंसानी हकूक के रेफरेंस में बिलखसूस वहाँ से आवाज़ सुनाई दे।
बहुत शुक्रिया सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदद किया है। बल्कि कश्मीरी अभी मुझे मेरे होम टाउन यानी मीरपुर में ही बहुत ज़्यादा हलाकतें भी हुई हैं जल्जले की वजह से, वो उन सब के लिए दुआएं भी हैं। और बहुत शुक्रिया कि आपका जो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है वो उसमें आप उसमें डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से रेस्क्यू एंड रिस्पॉन्सेज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। और इससे में जहाँ तक देखें जनरल असेंबली के इजलास का ताल्लुक है, UN में जनरल असेंबली के इजलास का ताल्लुक है, देखिए UN को बने हुए ऑलमोस्ट 70 साल से ज्यादा अर्सा गुजर चुका है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस को, ये अब तो ये जिसको कहते हैं अब आग लग चुकी है घर को, और वो जो है ना वो बुझाने की कोशिश मुझे नहीं कोई लगता कि कोई भी करने की अभी तक कोशिश कर रहा है। देखिए एम्प्टी वर्ड्स जो है ना वो हमेशा से UN में बोलते चले जा रहे हैं। मैं तो इसी कड़वी बातें करूंगी वो इसलिए करूंगी क्योंकि UN का इजलास भी है, बहुत सारे आपके सामने सुनने वाले भी हैं और उनको जानते भी हैं कि कश्मीरियों के साथ जातियाँ हमेशा से होती चली आ रही हैं और अभी तक होती हैं, और वो एम्प्टी वर्ड्स मुझे जनरल असेंबली के इजलासों और इन बातों से मुझे कोई तवक्को नहीं है कि वो कुछ ऐसा कर पाएंगे। लेकिन थोड़ी सी उम्मीद की किरण जो पाकिस्तान की तरफ से नजर आती है वो यही थी कि बहुत सालों बाद भी किसी वज़ीर आज़म ने इतनी, भले आप पॉलिटिकली किसी भी आइडियोलॉजिकली किसी भी तरीके से आप उनसे इख्तलाफ करें या जो मर्जी करें, लेकिन किसी भी अभी तक जो था किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने जाकर मुजफ्फराबाद में इतना बड़ा जलसा नहीं किया जहाँ पे आवाज़ यकीनन दूसरी तरफ गई होगी, बेसिक कम्युनिकेशन के ब्लैक आउट से, लेकिन वो आवाज़ जरूर गई होगी वहाँ तक पहुँची होगी। अच्छा जहाँ तक अब डिप्लोमेसी का ताल्लुक है तो देखें असल बात दरअसल ये है कि जब आप इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते, जब आप अपनी आपने बहुत सारी आपके पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, आप स्ट्रेटेजिकली अपने आप को पोजीशन है, आपके पास अलायंसेस मौजूद हैं, आपके पास लोग आपके पास कंट्रीज भी हैं जिनकी जिन्होंने आपको कुछ हद तक सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी इंटरेस्ट बेस्ड है सर. इसमें भी कोई ये नहीं कह सकते कि उनका कैसे, अगर चाइना से आपको सपोर्ट मिला है तो वो भी स्ट्रेटेजिक एसेट उनकी, उनको वहाँ तक स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हैं जहाँ पर उनको वो जरूरत भी है और वो पाकिस्तान का साथ भी दे रहे हैं, भले जैसे भी हो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं. फिर जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप और बड़ी दुनिया के ममालिक की बात है, यूरोपियन यूनियन में जैसे बात डिस्कशन हो रही है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि देखिए जरूरी नहीं है, अगर पीस एक्टिविस्ट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो भी जंग हो, कोई वॉर हो, जहाँ हम बहुत सारा खून बह रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि इस खत्ते में जहाँ एक न्यूक्लियर जो है ना उसकी टच है. मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि ऐसी वॉर की कोई सूरत हाल हो या कोई ऐसी, लेकिन देखिए उसकी भी बहुत सारे तरीके हैं, सेंक्शन इम्पोज है, लेकिन वो सेंक्शन क्यों इम्पोज करेंगे जबकि कल परसों तक ह्यूस्टन में जो जलसा हो रहा था तो वहां में डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके साथ खड़े थे. ठीक है, तो हम इस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दुनिया के इस तरह ममालिक से कि वो आकर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जहां तक हमदर्दी का ताल्लुक है, आपके साथ खड़े होने का ताल्लुक है, वहां दुनिया जरूर खड़ी होती है, लेकिन जहां पर एक्शन करने का ताल्लुक है वहां एक्शन जो है
तो आप एक स्ट्रेटेजिस्ट की हैसियत से हमें बताएं कि अमेरिका जो है बिलखुसूस.
देखिए बस मैं आपकी बात करती हूँ सॉरी, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का जहाँ तक ताल्लुक है, असद ने पहले भी रेडी पास बहुत सारे फोरम्स में ये बात कर चुकी हूँ और इसमें लोग मुझे एग्री भी करते हैं कि हाँ ठीक है कि आप वजीर अजम इमरान खान बहुत उनकी रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट बड़ी बहुत वो नहीं जा सकते हैं बहुत सारी दुनिया के, लेकिन हमारे फॉरन मिनिस्टर को दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने इस यूएन असेंबली के इजलास से पहले उनके कैपिटल में जरूर जाना चाहिए था, फोन नहीं करने चाहिए. तो मेरा ये कहना है कि एक्शन जो है ना वो बातें मैं कर लूंगी आपके साथ भी बैठ कर, बातें हम जरूर कर
लेंगे,
एक्शन कहाँ है.
ठीक है एक्शन. यासिर एक तो आप बिल्कुल इसमें ऐड भी कीजिए और दूसरा ये भी बताइए कि गुज़श्ता रोज़ प्रेसिडेंट ट्रंप ने दो बातें कहीं. एक तो उन्होंने खैर ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो जलसा था उसमें उनका लबो लहजा और ज़बान ज़्यादा सख्त थी, लेकिन बजात खुद भी उन्होंने रेडिकल इस्लाम की भी टर्म इस्तेमाल की. और बाकी दूसरा ये है कि कश्मीर के मामले पर एक बार फिर उन्होंने सॉलिसी की पेशकश की है, भारत उसको ऑफकोर्स कबूल नहीं करता या आज तक की तब्जी, लेकिन क्या इस दफ़ा जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वन पॉइंट एजेंडा बज़ाहिर ये लग रहा है, वो ये बता रही हैं कि इसको गैर संजीदा ना लिया जाए मामले को, ये किसी भी सतह पे जा सकता है और दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं और उनके दरमियान मुखासमत या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दुनिया के मफाद में नहीं है, इस मैसेज को देखते हुए कम अज़ कम दुनिया पोलिटिकली बेशक उनके इंटरेस्ट या अलाइनमेंट हो इंडिया के साथ, लेकिन राइट्स के इशूज़ के ऊपर या दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात जैसे कंपोजिट डायलाग का सिलसिला होता है वो बहाल कराने के लिए दबाव डाल सकती है. प्रेसिडेंट ट्रंप उसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं, बाकी दुनिया कर सकती है, तजिया कार और जनरल सलकों में क्या सजे जा रहे हैं.
बिल्कुल जी बिल्कुल. पहले तो जो मेरी साथी कुलीग यहाँ पे जो बात कर रही हैं, अब मेरा ताल्लुक भी इत्तेफाक से कश्मीर से मुजफ्फराबाद से है और बिल्कुल मेरी कंडोलेंसेस उन फैमिलीज के साथ हैं जो आज साने में जिनकी शहादत हुई है, जांबाक हुए हैं और जो जख्मी हुए हैं, अल्लाह ताला ने जल्द से आप करे. पहले तो ये दूसरी बात जो आपने की और मुहतरमा बात कर रही थी, हाउडी मुड़ी जब होता है तो पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पे भी हमें ह्यू एंड क्राई मिलता है सुनने को कि जी शायद बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया उस जगह पे जहाँ ह्यूस्टन में 1.5 लाख के करीब इंडियंस हैं वहाँ पे 50,000 का मजमा इकट्ठा करके, तो बहुत बड़ा कारनामा, जबकि वाशिंगटन डीसी में कोई ये सोच नहीं सकता था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 25,000 के मजमे से खिताब कर सकते हैं. वहाँ पे जब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी मौजूद थे, सदर मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने इस्लामाइजेशन एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट की बात की और वही उन्होंने दोबारा रिटोरिक जो है वो दोहराने की कोशिश की जो कुछ अर्सा पहले तक आपको बताया इंटरनेशनल मीडिया में जब न्यूजीलैंड का सानिया हुआ तो उसके बाद से इंटरनेशनल काफी ये बात हुई कि ये दहशत गर्दी इसको सिर्फ इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता, इस्लाम फोबिया नहीं किया कहा जा सकता, बल्कि इसे हमें मजाहब से हटकर इसको देखना होगा. जहां तक कश्मीर की बात है तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से वहां पे बात की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को किसी भी जगह पे आइडेंटिफाई नहीं किया. यकीनन ये इस बात की मैं समझता हूँ कि भारत की इस हवाले से नाकामी है कि उन्होंने बड़ा परसुएट करने की कोशिश की और उन्होंने उस रवैये की बात की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात में जिस रवैये की तरफ आपने इशारा किया कि उनका रवैया जारहाना था, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी कोशिश भारत की तरफ से जो की गई है, यकीनन आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं और ह्यूस्टन में अगर इतना बड़ा जलसा होता है, इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसका एक सियासी तौर पे फायदा डोनाल्ड ट्रंप को भी होता है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की, तो उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात में उस अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से। तो ये इस बात की गमाज है कि उन्होंने कोई उनकी जबान इस्तेमाल नहीं की या उनके अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, या उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भारत की बात सुने, या भारत ने जो किया 35 या 370 को खत्म करके ये बिल्कुल ठीक किया है, इसको ऐसे करना चाहिए। जो अफवाज की बात हो रही है कि फौज चढ़ाई जाएगी उनके चीफ की जानिब से, वो बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह की किसी भी स्टेटमेंट को उन्होंने एंडोर्स नहीं किया, बल्कि उन्होंने दोबारा इस बात का इरादा किया है कि मैं दोनों के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं इसमें जो आप कह सकते हैं कि जो अपनी खालसी का जो किरदार अदा कर सकता हूं, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि मैं सालची का किरदार अदा कर सकता हूं।
और यासिर वैसे इससे ज्यादा असूलन तो ये किसी मुल्क से ये तवक्को रखी भी नहीं जा सकती ना कि वो आर्म ट्विस्टिंग करके दूसरे को किसी एक फरीक के हक में मजबूर कर दे।
जो आपने बात की, जी जी बात की, प्राइम मिनिस्टर इस हद तक यकीनन जरूर कामयाब हो गए हैं दुनिया को ये बावर करवाने में कि अगर दुनिया अब सीरियस इस पे नहीं होती तो ये मामला बहुत खराब सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा, ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि दुनिया के लिए। और इसका इजहार आपने देखा होगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर भी कहा है कि ये मामला बहुत गंभीर है, बहुत संजीदा मामला है। तो मेरा ख्याल है थोड़े को बहुत समझा जाए कि वो उसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं, और यही वजह है कि जो सेनेटर्स हैं उन्होंने खत लिखकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इसकी तरफ इशारा
तवज्जो मबजूल कराई उनके, और बड़े पावरफुल सेनेटर हैं वो यासिर रहमान। फरहत आसिफ साहब, आप ये बताइएगा कि एक तो ये कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जब हम मीडिया देखते हैं तो ऑफकोर्स उसमें एक तनकीद भी हो रही है कि शायद वो कुछ नहीं किया गया इस इशू के ऊपर जो करना चाहिए। दूसरी तरफ जो उनके हामी हैं हुकूमत के, वो कहते हैं कि तमाम जो कुछ मुमकिन था वो कर लिया गया है। आप गैर जानबदारी से बताइएगा कि क्या मज़ीद ऐड किया जा सकता है इस इशू के ऊपर।
देखिए सर, बात दरअसल ये कि जो हुकूमतें हैं, सारी हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, हर हुकूमत ने अपने टाइम पीरियड पे जैसा उनसे बन सकता था वैसे किया, जैसे उनकी समझ थी, जैसे उनकी अप्रोच थी, वो कर चुके। अब वो उनको बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो ये कहेंगे अच्छा यूं होता तो ऐसे होता और ऐसे होता तो क्यों होता और कैसे होता। तो ये जो बातें मुझे बड़ी मजाका वेज किस्म की लगती हैं कि जब वो उनका अपना टाइम था और कश्मीर इसी तरह से चल रहा था, कश्मीर के इसी तरह से हालात थे, अब तो खैर वो जो 6 अगस्त की बात तो फिर और सिचुएशन गंभीर है और सिचुएशन बहुत चीजों की डिमांड भी करती है। यहाँ पर सिर्फ हम गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखते, भाई तुम ही ये करो और तुम ही यूं करो, यहाँ सिविल सोसाइटी, यहाँ मीडिया, यहाँ लॉयर, यहाँ यंग लोगों का, मेरी नजरें एज ए कश्मीरी, ऑफकोर्स आप गैर जानबदारी की जहाँ तक बात करते हैं तो मुझे हाँ जितना इनसे बन सकता है। देखिए असद, हम मिलिट्री ऑप्शन तो हम साइड पे रखते हैं, मैं उस तरफ इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि सिर्फ कश्मीरी नहीं, यहाँ इस खत्ते में बहुत सारे ममालिक बहुत दूर तक तबाहियां फैल सकती हैं, इसलिए मैं उसको रूल आउट करने की कोशिश की भले जो मेरा दिल करता है, लेकिन उसको रूल आउट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं पीस एक्टिविस्ट हूँ, अमन मुझे चाहिए, मुझे पीसफुल तरीके से रेजोल्यूशन चाहिए, मुझे कश्मीरियों की आवाज़ सुननी है, उनको पीसफुल तरीके से आप रिजॉल्व करें चीज़ों को। हाँ, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत से जहाँ तक बन सकता था उनके पास जितने रिसोर्सेज थे उन्होंने सारे यूटिलाइज किए हैं, लेकिन मैंने अभी पिछली आपके सवाल के जवाब में भी ये कहा कि हाँ ठीक है, जहाँ बहुत सारी जगहों पर नहीं जा सकते, लेकिन माजरत के साथ कि उनको हर उस कैपिटल में जाना चाहिए था जो पर्सनली बात करके आप किसी को कन्वे कर सकते हैं। असद, फोन पे अभी भी आपके ऑफिस से आपके रेडियो पे प्रोग्राम में आ जाओ, वो केमिस्ट्री और तरीके से बनेगी, बनीसत की मैं यहाँ दूर तक बैठी हूँ। तो आप जब तक कैपिटल में जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, अब देखिए अभी हम यूएन जनरल असेंबली में इमरान खान साहब की ईरान की सदस्य हुई, तुर्की के उनसे हुई, चीन के से हुई, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, तो एक रेपो बन जाती है, एक मोमेंटम बन जाता है। जब तक कि आप वहाँ पर अपनी तकरीरें कर रहे हैं या तकरीर करने वाले हैं तो वो आपको एक मोमेंटम बनेगा, आपको मालूम होगा कि हाँ ये ममालिक ऐसे हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, भले वो स्टेटमेंट दें या ना दें, लेकिन उनकी मॉरल सपोर्ट हमारे साथ है। रीजनल जो कंट्रीज हैं उनकी मॉडल्स बहुत हमारे साथ है, एटलीस्ट देयर स्टैंडिंग है. लेकिन ये मैं हमेशा से कोशिश चाहूंगी कि सिविल सोसाइटी का जो रोल है उसको यहाँ बहुत बहुत जरूरी है. बहुत कम मुझे नजर आता है सिविल सोसाइटी एक दो जलसे यहाँ वहाँ बातें और करके तो वो खामोश हो जाते हैं. लेकिन एक मोमेंटम, एक जैसे ना एक इनोवेटिव अप्रोच यहाँ पे बहुत सख्त जरूरत है. मैं उन देखिए असर हमें गैर जानबदारी की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर से इंडियन दोस्तों और भाइयों की और बहनों की आवाजें दूसरी तरह से खड़ी हैं, जहाँ पर वो अपनी गवर्नमेंट को कटहरे में खड़े करके लेके आ रहे हैं, जहाँ पर उनकी कोर्ट्स उनको क्वेश्चन कर रही है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर बात की है, जहाँ पर लोगों सिविल सोसाइटी के अंदर की आवाजें आ रही है. तो गैर जानबदारी और इंसानियत के साथ खड़े होने में वहाँ के लोग भी उसी तरह से खड़े हैं कश्मीर अपनी बहन भाइयों के साथ. तो वो गैर जानबदारी तो आपको पूरे भले नजर आती है, लेकिन उन 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 आवाजों को दबने नहीं बल्कि उनको और एम्पलीफाई करने की बड़ी शिद्दत किस्म की जरूरत है.
जी हमारे साथ रहिएगा. हमें भारत से ज्वाइन किया है जनरल दीपांकर बैनर्जी ने, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज. और हमारा जो अगला सेगमेंट है जिसके अंदर खासतौर पे भारत की तरफ से आने वाले ये इल्जाम के बालाकोट के अंदर उनके बकौल एक टेररिस्ट कैंप को दोबारा मुतहरक कर दिया गया है और पाकिस्तान उसकी तरदीद कर रहा है, उस पर उनका मैंने वर्जन लेना है. लेकिन ब्रिगेडियर मेजर जनरल दीपांकर बैनर्जी साहब बहुत शुक्रिया आपका. हमें ब्रिगेडियर साद नज़ीर साद मोहम्मद भी हमें ज्वाइन करेंगे अभी आपसे. ये पिछले सेगमेंट में जो हम बात करते हुए आ रहे हैं वो है पाकिस्तान की एडवोकेसी कश्मीर के इशू पे ऊपर. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि कश्मीर में कोई गड़बड़ नहीं है, उनके लफ्ज़ों में आतंक है और उसको जो लोग सपोर्ट करते हैं उनसे डील करने का वक्त आ गया. आपके ख्याल में दुनिया किसकी बात को ज़्यादा बेहतर तौर पे सुन रही होगी, या पाकिस्तान ने अगर इस पर अपनी मुहिम शुरू की है तो कितना वो कन्विंस कर सकता है दुनिया को?
देखिए मेरे ख्याल अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो बात करेंगे और ह्यूस्टन में जैसे वो बात किए हैं और इंडिया में भी जैसे वो स्टेटमेंट्स वगैरह हुआ है, इसमें जाहिर होता है कि जम्मू एंड कश्मीर में हालत अभी अच्छा है. कोई तरह तरह के कार्रवाई नहीं हो रहा है. हाँ ये ठीक बात है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट और बाकी में वायरलेस कम्युनिकेशन में भी थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, कम रिस्ट्रिक्शंस हैं. काफी जो पहले था उसको निकाला दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर में अभी हालात तकरीबन ठीक हुआ है. और ऐसे जो है अभी ये जो 5 अगस्त के बाद अभी जो हालात वहाँ है वो बिल्कुल शांत है, कोई तकलीफ नहीं है. तो इसी में जो कोई तकलीफ हुआ है, कोई ये हुआ है, कोई खास नहीं है. किसी को जान नहीं गया है, किसी का कुछ बुरा नहीं है. कुछ आने जाने में वगैरह थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है, वो भी आस्ते आस्ते सब उठाया जा रहा है. तो भारत की तरफ से मैं कहूंगा कि इसमें कोई खास बात नहीं हुआ है अभी तक, बिल्कुल शांत है.
ठीक है, अभी इसमें शांत है. चंद सेकंड हमारे साथ एक ब्रेक हम लेंगे और हमारे साथ रहिएगा फरहत आसिफ साहब, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड डिप्लोमेसी, यासिर रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन हमारे साथ रहिएगा. एक एक सवाल अगले सेगमेंट पर आपसे करना चाहूँगा, फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे. लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक.
VOA उर्दू अब आपके हाथ में. पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए. दूर जाने की जरूरत नहीं. VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं. आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है. VOA उर्दू अब आपके हाथ में.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है. प्रोग्राम है जहाँ रंग. मैं हूँ असद हसन, प्रोड्यूसर एंजम हैरल्ड गिल. और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे भारत की जानिब से, भारत की फ़ौज के सरबराह की जानिब से ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर कि कश्मीरी अलहदगी पसंदों के कैंप जो है वो बहाल किए जा रहे हैं. बिलखसूस उन्होंने बालाकोट का नाम लिया है कि वहाँ पर उनके लफ्ज़ों में जो टेररिस्ट कैंप है उसको रीएक्टिवेट किया जा रहा है, और जहाँ पर उनके ख्याल में 500 से ज़्यादा शिद्दत पसंद जो हैं उनको भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दरअंदाजी سازی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بذات خود اس کسی بھی ایسے رویے کی بھی مذمت کر چکے ہیں, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر انڈیا کے اندر انفلٹریشن ہوتی ہے پاکستان کی جانب سے تو وہ نہ صرف کشمیریوں کے ساتھ دشمنی ہوگی بلکہ نہ صرف پاکستان کے ساتھ دشمنی ہوگی بلکہ کشمیریوں کے ساتھ بھی وہ دشمنی کے مترادف ہے. سو یہ پاکستان کا ایک آفیشیل ورژن ہے. پاکستان کی فوج نے, پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی اس بیان کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کوئی پلان وہاں پہ نہیں ہے. میں اس بیان پہ تو بعد میں آؤں گا, لیکن جنرلی چونکہ ایک اشتعال یا غصہ آپ وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے عوام میں دیکھا بھی جاتا ہے. سو فرد آصف اور یاسر رحمان سے میں کوئی کس کے اوپر اوپینین لیتا ہوں. یاسر, یہ بتائیے گا کہ جیسے ایک انڈیجنس موو کہا جاتا ہے کہ انڈین کنٹرول کشمیر کے اندر موجود ہے, پاکستان کے اندر بھی مختلف گروپس رہے ہیں جن کے اوپر اس وقت ریاست کی سختی ہے اور ایون لیڈرشپ جو ہے وہ یا پابند سلاسل ہے یا نظر بند ہے, اور کوئی ایسی جو تنظیم اگر تھی بھی تھی صحیح فعال تو بہت ساری تنظیموں کو بین کیا جا چکا ہے پاکستان کے اندر بھی, اقوام یو این کی جانب سے بھی اور امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی, لیکن اس کے باوجود کیا اس بات کا احتمال ہے کہ کچھ لوگ انفلٹریشن کر سکتے ہیں کشمیر کے یہ گیون کنڈیشنز کے اندر؟ یاسر رحمان
جی, جنرل صاحب جو انڈیا سے شریک گفتگو ہیں انہوں نے جو بات کی ہے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے حوالے سے کہ وہاں جو صورتحال ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اگر کائنڈلی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کو اجازت دے دیں کہ وہ رپورٹ کر سکیں تو یقیناً ساری صورتحال وہ سامنے آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ گرفتاریوں کا سلسلہ تقریباً ساتھ جو موصول ہو رہی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے اب جو مقبوضہ کشمیر کی جیلیں وہ تو بھر چکی ہیں ان کو باہر بھیجا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے یعنی بھارت نواز جو لیڈرز تھے اور جو سابقہ جو سی ایم تھے مقبوضہ کشمیر کے ان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا ہے, نظر بند کیا گیا ہے. تو موومنٹ تو ہے ہی نہیں, وہاں پہ دعاؤں کا فقدان ہے اور ڈاکٹرز کے اپنے بیانات موجود ہیں کہ یہاں پہ 6 لوگ دواؤں کی قلت اور علاج کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈیلی کی اموات ہو رہی ہیں. 3,000 کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے جو کشمیری تاجر ہیں ان کو اس وقت تک, اور موومنٹ کی تو صورتحال آپ کے سامنے, اسکول بند پڑے ہیں, میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اس کو الاؤ نہیں کیا جا رہا, تو اصل صورتحال تو یہ, اور دنیا اس کو جانتی ہے, اس کو آپ کا چینل رپورٹ کر رہا ہے, بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے, الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, انٹرنیشنل نیوز, نیو یارک ٹائمز.
اب ذرا یہ ملٹنسی کی جانب آئیے گا, جو انڈیا کا الیگیشن ہے کہ ملٹنٹس کو جو ہے وہ
ریکٹ کر رہا ہوں, جو انہوں نے الزام عائد کیا, میں اس پہ بھی یہی بات کروں گا کہ پاکستان نے بڑا سٹرن ایکشن لیا ہے. پاکستان کی اسٹیٹ کسی طور پہ کسی گروپ کو الاؤ نہیں کرے گی یا کر رہی کہ وہ اپنے طور پہ کسی قسم کا کوئی ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کرے, سختی سے اسٹیٹ اس حوالے سے کاربند ہے. اور یقیناً جو ایف اے ٹی ایف کے اجلاس بھی ہوئے ہیں اس سے اس بات سے اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں, جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس کو روکنے کے حوالے سے, جو اس طرح کے فنڈ سے جو بینکس میں پڑے ہوئے تھے بلینز روپیز ان کو منجمد کر دیا گیا ہے, جس طرح کے ادارے تھے جو کل اگر تنظیموں کے زیر اثر کام کر رہے تھے ان تمام اداروں کو جو ہے وہ حکومتی تحویل میں لے لیا گیا ہے تاکہ انتظام حکومتی تحویل میں ہوں. پرائم منسٹر کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی ایسے وقت میں اگر وہ جاتا ہے کشمیر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچائے گا. تو یہ میرا خیال ہے بیان کافی حد تک آئی اوپنر ہے, اور جہاں تک جنرل بپن راوت کی بات, انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایک ٹائمنگ آپ دیکھ لیں کہ ابھی یو این جی اے کا اجلاس ہو رہا ہے, صرف پاکستان کو پورٹری کرنا ہے, پاکستان کو ثابت کرنا ہے,
تو اسی دباؤ کے زمین میں دیکھا جائے گا. اس کا
بھی پوچھتا رہا ہے اصل پاکستان, اسے پہلے بھی پوچھتا رہا ہے کہ آپ ثبوت دے دیں ہمیں, ثبوت ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے جو دینے کے لیے, صرف یہ کہ محض الزام تراشی سے کوئی چیز ثابت آپ نہیں کر سکتے.
یہ ماتیں فرض صاحب کوئکلی, ہمیں برگیڈیئر سعد محمد صاحب نے بھی جوائن کیا, ممتاز ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ ہیں, میجر جنرل دیپانکر بینرجی بھارت سے ہمارے ساتھ ہیں, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈی. سو کوئک ریمارکس فرد, آپ کے پاکستان کے اندر سے کسی طرح کی انفلٹریشن کے کوئی امکانات ہیں جس کے طرف الزام یا باقاعدہ الزام عائد کیا گیا ہے بھارت سے؟
دیکھیے جو الزام
میرے خیال میں
یہ بریگیڈیئر صاحب کو مس نہیں کی, کیونکہ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے کہ کسی قبرستان کی جہاں پر کوئی بھی ایسی چیز نہیں. دوسری بات یہ کہ کشمیر کے اندر جو کچھ بھی ये भी इन्होंने इल्जाम आयद किया है, तो पहली बात यह है कि वो पहले इसका सबूत लेके आए। हम इंटरनेशनल मीडिया, यूएन को, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कश्मीर के अंदर लेके जाए, वहां पर दिखाएं। और दूसरी बात यह कि कश्मीर से इंफिल्ट्रेशन इस वक्त मुमकिन इसलिए नहीं है कि वहां पर सख्त किस्म की वो है, पाकिस्तान की शदीद रिस्ट्रिक्शन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की रिस्ट्रिक्शन है। और अगर ऐसी कोई इंफिल्ट्रेशन होती है तो उसका फायदा किसका होगा? टाइमिंग आप देख लें, यूएन जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है, ये फायदा, ये इंफिल्ट्रेशन कोई भी ऐसा रिजल्ट होता है तो वो बिल्कुल पुलवामा होगा, जिसका फायदा सिर्फ वो
भारत को। बहुत शुक्रिया फरहत आसिफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। यासर रहमान, आपके भी हम ममनून हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और इस गुफ्तगु को हम आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर अरशाद मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं और मेजर जनरल दीपांकर बैनर्जी भारत से हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों को एक बार फिर वेलकम कहते हैं। जनरल दीपांकर बैनर्जी साहब, ये बताइएगा कि क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी जिसकी बुनियाद के ऊपर भारत की फ़ौज के सरबराह की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है? और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है सो ऑफकोर्स वो तो सेटेलाइट इमेजेस होंगे या कुछ, वो तो दुनिया को दिखाए जा सकते हैं, प्रूफ दिए जा सकते हैं। सो बिना प्रूफ के ऐसी कोई बात करना, वो भी आज के हालात में और ऐसे मौके पर जब अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास जारी है, इसको क्यों कर ये ना समझा जाए कि ये महज जो है वो दूसरी तरफ तवज्जो दिलाने की एक कोशिश है, और जैसे वो एक रिवायती तौर पर ब्लेम गेम रहती है दोनों मुल्कों की जानिब, उसका एक हिस्सा है, क्या कहेंगे
आप? मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल ठीक ठीक बात नहीं है कि हमारे असेसमेंट में है, और जिसके लिए हमें कुछ एक्शन जम्मू एंड कश्मीर में लेना मजबूर किया है। ये है कि अभी हमें अच्छी इंटेलिजेंस के वजह से खबर मिला है कि पाकिस्तान में ये टेररिज्म बढ़ाने के लिए, कश्मीर में बढ़ाने के लिए तैयारी हो रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने बताया था कि पाकिस्तान में अभी भी जहां से 5,000 टेररिस्ट हैं, जिसमें से अभी हमारे असेसमेंट जो है और आर्मी चीफ वी हल ने कश्मीर में गए थे पूरा इसका असेसमेंट करने के लिए, और उनके मुताबिक, आर्मी के इंटेलिजेंस के मुताबिक, कि 400 से 500 टेररिस्ट पाकिस्तान में अभी हैं, तैयार हैं, जो कि इंडिया में आएंगे। तो इसलिए मिलिट्री के हालत से या भारत सरकार के हालत से ये डिफेंसिव मेजर लेना पड़ता है, और इन्होंने लिया है और कुछ स्टेटमेंट भी दिया है कि ऐसे हमारे असेसमेंट है। तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, इंडिया को, भारत को सब प्रिकॉशन इसके मुताबिक लेना पड़ेगा। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने ये भी कहा है कि बालाकोट के पास जो टेररिस्ट कैंप खुद डिस्ट्रॉय हुआ था उसको अभी दोबारा बनाया जा रहा है और उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहां से हमें मालूम है कि वहीं से तो टेररिस्ट जो कश्मीर में आ रहे थे उनको तैयारी मिल रहा था उस इलाके में। तो इस खबर के मुताबिक हमने प्रिकॉशन मेजर्स ले रहे हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर ऐसे हरकत नहीं हो तो अभी कुछ दिनों में कुछ हफ्ते में कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जो प्रिकॉशन मेजर्स रखा हुआ है अभी कश्मीर में वो सब निकाल दिया जाएगा। इसी प्रिकॉशनरी मेजर्स के तरीके से हमने इसको लेना पड़ा है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये कोई खराब बात नहीं, किसी के लिए खराब बात नहीं है। और जो हालत है, हालत कश्मीर में नॉर्मल हो रहा है, सिर्फ बात है टूरिज्म जो होने था वो नहीं हो रहा है। टूरिज्म बहुत फायदेमंद है कश्मीर के लिए, उनका जो फ्रूट वगैरह है जो एक्सपोर्ट होता है उसके बारे में कश्मीर सरकार बिल्कुल गवर्नमेंट पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं, पूरा तरतीब निकाला हुआ है और उनको भेजा जा रहा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है।
ब्रिगेडियर असाद मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे आप, भारत के फौज की सरबराह की जानिब से ये बयान सामने आया, इंटेलिजेंस बेस्ड होगा या जो रिवायती तौर पे दोनों मुल्कों के दरमियान एक चलता रहता है उसी का, ये उसी सिलसिले की कड़ी है?
मेरे ख्याल में ये भारत के आर्मी चीफ ऐसी स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि इस किस्म की कार्रवाई पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में जमीनी हकायक इसके बरक्स हैं। जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो जो FATF के तहत पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है वो इस वक्त बिल्कुल गैर फाल हो चुके हैं, उनके नजर बंद है, उनकी लीडरशिप बंद है, उनके जितने भी इंस्टीट्यूशन वगैरह थे जैसे कि वेलफेयर इंस्टीट्यूशन थे या जो उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे वो तमाम गवर्नमेंट ने अपने तहवील में ले लिए हैं। तो उनके पास इस वक्त, उनको अगर फाल करना भी है तो उसको बहुत बड़ा टाइम लगेगा उनको दोबारा फाल करने में। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है, ये स्पेकुलेशन इसलिए होती है कि इस वक्त जो कश्मीर में उन्होंने 50 दिन का ऑलरेडी वो उन्होंने एक कर्फ्यू लगाया हुआ है, اور جو ہم غصہ پایا جاتا ہے کشمیر میں کے اندر، خاص کر وادی کے اندر، تو وہاں کا اس آدمی کو آپ نے یا اس کشمیری کو آپ نے کوئی اور آپشن دیا نہیں ہے کہ وہ واپس لڑے. ایک آدمی کی برابر تشدد کر رہے ہیں آپ، محلہ کی فوج بلا کے ہر گھر کے باہر آپ سپاہی کھڑا کر دیں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے آگے لڑنا ہے. تو وہ کشمیری اگر لڑ رہا ہے تو اس کا نہ پاکستان کوئی اس کو کچھ کر سکتا ہے، نہ ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے وزیر اعظم نے میرے خیال میں دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جو بھی یہ کام کرے گا وہ پاکستان اور کشمیر کو کے ساتھ دشمنی کرے گا. تو اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان اس قسم کی اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی ملیٹنٹس انفلٹریٹ کر کے جائیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ ظلم و تشدد جو کشمیر کے اندر برپا ہے اس وقت اگر یہ اس طرح جاری رہا، تو جو یہ ٹرانس نیشنل ملیٹنٹس ہیں ان کی موومنٹ جو ہے نا وہ اتنی آسانی سے کنٹرول نہیں ہوتی ہے. آپ نے اگر دیکھا پہلے جو افغانستان میں القاعدہ تھی یا باقی جو ملیٹنٹس تھے وہ گریویٹیٹ کر گئے لیبان کی طرف، چلے گئے اکراس ایران، چلے گئے عراق، چلے گئے اور وہ وہاں پر پہنچ گئے. جب وہاں پر ان کے خلاف کاروائیاں ہوئیں اور ان کو وہاں پر شکست ہو گئی تو وہ واپس گریویٹیٹ کر کے افغانستان کی طرف آ گئے. تو ان ایسے گروپس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ اتنے آسانی سے نہیں ہوتا.
جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ ہو، القاعدہ ہو، اس ٹائپ کی جو گروپس ہیں، یہ تنظیمیں جو گلوبلی یا انٹرنیشنلی جو
ہیں، یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس وہ وسائل موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ طریقہ کار موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ انفلٹریٹ کر کے ادھر چلے جاتے ہیں. آپ نے یورپ میں دیکھا بوسنیا میں جب ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو بہت زیادہ اس طرح ٹرانس نیشنل جو ملیٹنٹس تھے وہ چلے گئے تھے بوسنیا میں، جس کی وجہ سے پھر یونائٹڈ اسٹیٹس نے اور اس کی یورپین الائز نے بوسنیا کا جو ہے وہ مسئلہ ایک دم حل کر دیا تاکہ وہاں پر یہ کوئی جواز کسی کے پاس نہ ہو کہ وہ وہاں پر جا کے اور ملیٹنسی کرے یا انسرجنسی میں انوالو ہو جائے. تو یہ اس وقت کشمیر، یہ کشمیریوں کا ابھی مسئلہ ہے. کشمیر میں کشمیریوں نے اپنی لڑائی لڑنی ہے، آزادی کی جو ان کی جنگ ہے وہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے. وہ ایک بہت ہی اہم فریق ہے اس پورے ایشو میں، پاکستان بھی ہے، ہند بھی ہے، لیکن کشمیری سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے اندر.
سو بھارت کے بیان کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایون ان ٹرانس جو ٹرانس نیشنل جہادیوں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کی سرزمین یا وہ جو بارڈر لائن ہے اس کا استعمال نہ کر سکیں اور وہ دباؤ بڑھا دے اور اپنی نگرانی بڑھا دے؟
دیکھیں ان کے پاس صرف یہ پاکستان کا راستہ نہیں ہوتا، وہ باقی راستے تلاش کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان کا راستہ استعمال کریں،
بلکہ بعض وقت وہ تو لیگل چینل سے بھی پہنچتے ہیں، لیگل چینل سے جاتے ہیں.
جی ویپنز کی جو اسمگلنگ افغانستان میں، امریکہ جیسے طاقت ہے اس کے پاس فورس ملٹی پلائرز ہے افغانستان میں ہے، ویپنز تمام سینٹرل ایشیا سے آ رہے تھے افغانستان میں اور اسمگلنگ ہو رہی تھی، امریکہ اس کو نہیں روک سکا، نیٹو اس کو نہیں روک سکا. تو باقی ملکوں کیا مجال ہے کہ اگر اس قسم کی موومنٹس وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو روکنے کی وہ کوشش کی جائے.
ٹرانس نیشنل جہادیزم کے اوپر جنرل دیوان کا،
جڑ سے ختم کریں گے تو تب مسئلہ حل ہوتا ہے. مسئلہ ایسے حل نہیں ہوتا ہے کہ آپ شاخ فراشی کریں اور آپ کہیں کہ جی کشمیر میں سچویشن نارمل ہو جائے گی کچھ دنوں کے بعد. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے، آپ وشفل تھنکنگ ہے کہ جی آپ کہیں گے کشمیر میں سچویشن نارمل ہو جائے گی، یہ نارمل ہو نہیں سکتی ہے.
ہم اس ٹرانسنیشنل جہادی فیکٹر کے اوپر،
اس کے اوپر کیسے آپ کنٹرول کریں گے؟
ٹرانسنیشنل جہادیزم کے فیکٹر کے اوپر رائے لیتے ہیں جنرل دیپانکر بینرجی کی. جنرل صاحب آپ اپنی رائے اس میں دیجیے گا. بریگیڈیئر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے سختی ہے، کسی بھی طرح کا گروپ موجود نہیں، اور اگر ایکٹیویٹ ہو بھی تو اس کو تو بہت وقت لگے گا، لیکن ٹرانس نیشنل جہادی کہیں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں سچویشن کو. آپ کی رائے؟
بالکل بات، یہ بات میں ٹھیک ہے اور میں مانتا ہوں. ابھی ایک ٹرانسلیشنل اسلامک ریڈیکلزم، یہ عراق کے لڑائی کے بیچ میں، سیریا میں لڑائی کے بیچ میں، اس میں یہ شروع ہوا ہے. اس میں جو آئیسس نے گلوبل جہاد کرنے کے لیے کال دیا ہے، یہ درست بات ہے. اور ابھی ان کا ٹارگیٹ ہے ساؤتھ ایشیا، خاص کر کے انڈیا میں، یہ درست بات ہے. اس کے لیے بھی ہمیں بہت ہی تیاری کرنا پڑے گا اور بہت پریپیئر کر کے رہنا پڑے گا. پر یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو آنے کا راستہ صرف پاکستان سے ہی ہے، اور ٹیررزم کا جو اڈا، جو سینٹر جو پاکستان میں ہو گیا ہے، شاید پاکستان کا پورا دوست نہیں ہے اسے، یہ افغان رائج کے 1979 سے چل رہا ہے. پر پھر بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہی جو انڈیا کے پرائم منسٹر ابھی ہوسٹن میں جب آئے ہیں، 9/11 کی اٹیک ہی ہو یا بھارت میں 26/11 کا اٹیک ہی ہو، ان کا جو مدعا ہے वो पाकिस्तान से निकलता है, और ये आईसिस का आक्रमण वगैरह तैयारी अगर होगा, अभी यूरोप में वो खत्म हो गया तकरीबन, वो भी अभी ये अफगान पाकिस्तान इस इलाके में होगा, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत जरूरी है उनके अपने के लिए, और भारत के लिए बहुत जरूरत है कि भारत के सिक्योरिटी के लिए ये बंद करे।
सही।
भारत अपने बॉर्डर में बिल्कुल तैयार है, इन्फ्यूशन नहीं होगा, आर्मी तैयार है, पर इसके लिए हमें तैयारी रहना पड़ेगा। अभी भी आज ही खबर मिला है कि पंजाब के इलाके में ड्रोन की मदद से हथियार और सामान ये भारत में 10 लाख इंडियन रुपीज फॉल्स करेंसी ये इंडिया में पंजाब इंडिया के पंजाब में ये लैंड हुआ है, आज ही शाम को ये खबर मिला है। तो इस मुताबिक जो हरकत हो रहा है होगा, इसके बरखिलाफ इंडिया तैयार रहेगा और भारत की सेना जो है
इस खबर पे आएगा। ब्रिगेडियर साहब आप फरमाइएगा, जो वो कह रहे हैं कि आज ही की खबर ये आ रही है कि भारत के पंजाब में ड्रोन के जरिए वेपन्स जो हैं वो पहुंचाए गए हैं, क्या इम्कान आते हैं इसके खबर के?
ये मतलब है कि इस किस्म के दावों के ऊपर मैं क्या बात कर सकता हूँ, मतलब है कि ये तो बिल्कुल हवा में बेपर उड़ाने वाली बात है। मतलब है कि आप कोई प्रूफ दें कौन सा ड्रोन है, किधर से आया, किसको हथियार पहुंचाए, कहाँ से उड़ा, मतलब है कि इट डजंट मेरिट माय रिस्पांस कि इस किस्म की जो वाइल्ड किस्म की एक्यूजेशंस आप आती हैं और ये हो गया पाकिस्तान ने ये कर दी है और पाकिस्तान ने वो कर दी है, इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है।
ठीक। और यानी ये तो ऐसे एलिगेशंस जिनके साथ
दावे कर सकता हूं कि हिंदुस्तान ने किए
वैसे ये मैंने हाल ही में अभी टेलीविजन पे देख रहा हूं,
टीवी न्यूज की आपने रिपोर्ट किया
पहले, तो ये कल परसों कुछ खबर मिल जाएगा। बात यह है कि इस तरह के कार्रवाई हो सकता है और हमें इसके लिए तैयारी रहना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी इस तरह के हरकत के बारे में तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए भी कुछ अच्छे नहीं होंगे अगर इस्लामिक रेडिकलिज्म यूरोप से या कहीं और से
अभी कह रहे हैं ये खतरात मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान भारत दोनों को कॉशियस होना होगा। बहुत शुक्रिया आपका जनरल दीपांकर बैनर्जी साहब, आपने ज्वाइन किया, ब्रिगेडियर साहब मोहम्मद साहब आपके भी हम ममनून हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सामने बात करते हैं पाकिस्तान में सिलसिला बिलखसूस पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाकों में।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां न्यूज नेटवर्क और वॉइस ऑफ अमेरिका की मुश्तरका पेशकश है। ये प्रोग्राम सुनते रहिए और इस बारे में अपनी आरा तजावीज और सवालात के लिए हमसे राब्ता कीजिए facebook.com/sejradio या फिर facebook.com/radionewsnetwork।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है और प्रोग्राम है जहां रंग में हूँ असद हसन, प्रोड्यूसर हैं अंजुम हेरल्ड गिल। बात हम करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है वो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, उसका जो मीरपुर खास का इलाका है, और बताया ये जा रहा है कि अभी तक कम अज़ कम इसमें मुख्तलिफ शहरों में जलजले के सबब जो पेश आने वाले हादसात हैं उसमें कम अज़ कम 10 अफराद हलाक हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर इत्तला'आत मुश्ताक मिन्हास, उन्होंने कुछ देर पहले वॉइस ऑफ अमेरिका से बात भी की और इसकी उन्होंने तस्दीक की है। उस वक्त तक 8 अफराद और 120 उनका ख्याल था कि उससे ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन कुछ देर पहले उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजाल जो कि चेयरमैन है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, यानी कौमी सतह पे जो आफात हैं उनसे निमटने का ये इदारा है, उन्होंने ब्रीफिंग दी है और इस ब्रीफिंग में उनका ये कहना था कि 10 अफराद मारे गए हैं, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, और वो ये कह रहे थे कि इस वक्त तक चीज़ें और हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं, मुतासर अफराद तक इमदाद पहुँचाई जा रही है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और इस वक्त किसी भी तरह के रज़ाकारों की या कम्यूनिटी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि लोग पाकिस्तान के इलाकों से वहाँ पे जाएं और या इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसमें इंगेज किया जाए। वो ये कहते हैं कि अगर ज़रूरत महसूस की गई, जैसे जैसे असेसमेंट होती है पता चलता है तो उसके साथ साथ उसको अपडेट किया जाएगा। ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की हुकूमत और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो वफाकी इदारे, सूबाई इदारे اور کشمیر کی بذات خود جو لیڈرشپ مشینری وہ سارے حالات کے اوپر آن بورڈ ہے. یہ زلزلہ جو ہے وہ آیا امریکن جو ارضیاتی سروے یا امریکن جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق 5.8 اس کی شدت تھی, لیکن اس زلزلے کے جھٹکے چونکہ یہ بارڈر ایریا ہے بھارت میں بھی محسوس کیے گئے ہیں, اور بھارت کا جو جیولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کی رپورٹ یہ ہے وہاں سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے اس کے مطابق 6.2 ریکٹر اسکیل کے اوپر اس کی شدت جو ہے وہ محسوس کی گئی ہے. کافی بڑا زلزلے کا جھٹکا تھا. جو امیجز جو تصاویر ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑکیں تک جو ہیں اس میں بڑے گہرے شگاف پڑ گئے ہیں اور کافی لوگ زخمی ہیں, کافی عمارتیں جو ہیں وہ منہدم ہوئی ہیں اور یا ان کو نقصان پہنچا ہے. مشتاق مینار صاحب کی ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ وہ براہ راست ہمارے ساتھ ہوں اور اس کے بعد پھر ہمارے اپنے جو نمائندے ہیں کشمیر سے اور اسلام آباد سے ان سے ہم اپڈیٹس لیتے ہیں. پہلے مشتاق مینار, وزیر اطلاعات پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے.
جو 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد یہ دوسرا زلزلہ آیا, لیکن اس کی شدت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ نہیں تھی جو کہ 8 اکتوبر والے زلزلے کی تھی. تو وہاں پر جو ہی زلزلے کی جو اطلاع ہوئی اور اس کے بعد تمام آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ہم نے وسائل جو ہیں وہ ریسکیو آپریشن میں ہم نے وہاں پر موبلائز کر دیے تھے. اب تک کی جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں, مسدقہ اطلاعات ہیں, جو کہ 8 افراد کی جو ہے وہ اس زلزلے میں انتقال کرنے کی, مارے جانے کی, جاں بحق ہونے کی جو ہے وہ اطلاع ہے, اور 120 سے زائد زخمی ہیں, اور تقریباً 3-4 پراپرٹیز جو ہیں وہ مکمل طور پر ڈیمیج ہوئی ہیں, اور کافی ساری درجنوں پراپرٹیز ایسی ہیں لوگوں کی نجی ملکیت میں, اور اس میں گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں, جس طرح تھانہ افضل پور ہے اس کی عمارت کو جزوی نقصان پہنچا ہے. جو ڈیمیج ہوئی ہے میرپور جاتنا روڈ ہے وہ 2-3 جگہ سے بڑی سویئر ڈیمیج ہوئی ہے, اور وہاں کافی بڑے 10 فٹ سے زائد جو ہے وہ جو ہے نا گڑے پڑ گئے ہیں. تو ابھی تک کی جو صورتحال ہے کنٹرول میں ہے معاملات, اور آزاد کشمیر کی جو اپنی جو ٹیم ہے وہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, انہوں نے یہ ریسکیو آپریشن مکمل کیا, اور پاکستان آرمی کے جوانوں نے بھی ان کی معاونت کی ہے. ہم نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس آپریشن کو جو ہے جو اس وقت جاری ہے اس میں اس کو جو ہے نا کافی حد تک جو ہے مکمل بھی کر لیا گیا ہے. ہمارے ہاسپٹلز میں جو ہے نا 120 سے زائد زخمی موجود ہیں, ان کی 3 کیٹیگری ہیں, وہ تھوڑے زیادہ شدید زخمی ہیں, کچھ زخمی ہیں اور کچھ معمولی زخمی ہیں. جو زخمی ہیں اور جو شدید زخمی ہیں وہ ان کا علاج معالجہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کر رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی حد تک ریسکیو آپریشن ہمارا مکمل ہوا ہے اپنے یہ جو 3 گھنٹے گزرے ہیں ہمارے. اس کے علاوہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہماری ٹیمیں فیلڈ کے اندر متاثرہ علاقوں میں موجود ہے, اور اگر ان کو کوئی اس طرح کی اطلاع ملی, کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر روڈ انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر نہیں ہے, لیکن کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑے پیمانے پر کوئی وہاں پر کوئی نقصانات کا اندیشہ ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80% ہمارا جو ریسکیو آپریشن ہے وہ مکمل ہے. ابھی 20% اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس طرح کے ڈیزاسٹر میں کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ایکسیس میں نہیں ہوتی, یا آپ کے جو ہے نا مواصلات کا نظام اس طرح کام نہیں کرتا کہ آپ کو اطلاع مل سکے, لیکن پھر بھی ہماری ریسکیو ٹیمیں فیلڈ کے اندر موجود ہیں. ان کو جوئی کو ایسی کسی جگہ سے بھی اطلاع ملے گی وہ رات کو جا کے یہ آپریشن مکمل کریں گی.
جی سامعین, یہ تھے مشتاق مینار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اطلاعات, اور اب ہمارے ساتھ ہیں علی فرقان اسلام آباد سے, ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں اور اس سچویشن کو فالو کر رہے ہیں. علی فرقان بہت شکریہ آپ کا. کیا تازہ ترین اطلاعات مل رہی ہیں کشمیر سے اور میر پور, اور خاص طور پہ وہ علاقے جہاں زلزلے نے سب سے زیادہ جس کو متاثر کیا ہے؟
جی, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو ادارے ہیں قومی سطح کے این ڈی ایم اے کے جو چیئرمین ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ 10 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ان کے انہوں نے تصدیق کی ہے. لیکن جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہاں پہ ضلعی سطح پہ ڈویژنل جو کمشنر ہیں چودھری محمد طیب, جو کہ میرپور کے ڈویژنل کمشنر ہیں, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. ان کے مطابق میرپور میں 19 افراد کے جاں بحق ہونے کی جو ہے وہ انہوں نے تصدیق کی ہے, جس میں 3 بچے جو ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور ان کے مطابق 300 سے زائد افراد جو ہیں وہ ان کے زخمی ہونے کی جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں ان کے پاس, جو کہ مختلف ہسپتالوں میں جو رفری کے جائیں ان کو وہ ابھی بھی زیر علاج ہیں. یہ ان کی طرف سے مقامی سطح کے اوپر جو ذریعہ ہے ان کی جانب سے یہ ترتیب جو ہے وہ سامنے آئی ہے.
روشن مغل نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, علی فرقان ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. تو روشن مغل ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے. روشن بہت شکریہ. کشمیر کے بالخصوص کون کون سے ایریاز سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور کس طرح کی اطلاعات آپ تک پہنچ رہی ہیں؟
جی, یہ شمالی ضلع ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا, میر پور کا علاقہ. اس پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا یہ علاقہ ہے اور یہاں کے جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر ہے, کوئی ایک ملین کے قریب لوگ ہیں. یہ اس کا شہر کا ایک سینٹرل کا ایک حصہ اور جاتنا اس کے قریب کا جو جاتنا زیادہ ایریا میں یہ ایریا افیکٹ ہوا ہے اور جس میں اس وقت تک 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ انفارمیشن ہے پاکستانی کشمیر کے مشتاق مناف نے کنفرم, اور 8 اور لوگ بھی ہیں اور کل ملا کے 20 کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور 22 سے زائد جو ہیں یہ زخمی ہیں, جن میں سے 50 جو ہیں یہ تھوڑے شدید زخمی ہیں.
20 کی ڈیتھ آپ کنفرم کر رہے ہیں کیونکہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین نے اب سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے 40 منٹ پہلے جو بریفنگ دی تو اس میں ان کے جو فگرز تھے وہ بتا رہے تھے کہ 10 افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں اس زلزلے میں ابھی تک. تو آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ 20 ہو چکی ہے یہ تعداد؟
20 انفارمیشن منسٹر پاکستان کشمیر کے, انہوں نے ہمیں کنفرم کیا ہے. اور اس وقت تک ابھی کوئی اپنا شاید جو زلزلے کے بعد آتے ہیں جیسے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایریا میں سیکشن جو تھی پنجاب کی طرز کی ہے اس وجہ سے بھی وہاں پہ زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. تو ابھی تک صورت حال یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا یہ ڈیتھ ٹول بڑھ بھی سکتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, کوئی زیادہ بڑھنے کے اس میں چانسز کم ہیں.
یہ بتائیے گا روشن مغل, کے اتفاق یہ ہے کہ اب اکتوبر کے اندر تقریباً 12 سال مکمل ہو رہے ہیں, 11 سال مکمل ہو جائیں گے, معافی چاہتا ہوں 14 سال مکمل ہو جائیں گے جو 2005 میں زلزلہ آیا تھا. ہزاروں کی تعداد میں کم و بیش 80,000 افراد اس میں لقمہ اجل بنے تھے. سو وہ اکتوبر کے اندر تھا اور ابھی تو اس کے نقصان اور اثرات جو ہیں وہ باقی ہیں. سو اس ریفرنس میں چونکہ یہ کم و بیش وہی دن ہیں وہی موسم ہے, سو اس میں تو بہت زیادہ خوف و ہراس ہوگا شہریوں کے اندر.
جی, شہریوں کے اندر بہت زیادہ خوف و ہراس ہے اور اس علاقے میں کئی دفعہ آیا ہے کیونکہ جب یہاں پہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان ضلع میں جنوبی ضلع ہے ظفر آباد ہے راولہ کوٹ ہے ان علاقوں میں جب آیا تھا تو وہ علاقے جو وہ جو 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 ہے ان کے جنوبی ضلع میر پور اور کوٹلی اور بمبر کے علاقے یہ علاقے محفوظ تھے. تو میر پور میں جو اس وقت جو ہے اس کی وجہ سے جو نہر ہے اس کے ساتھ ایک
مواصلاتی رابطے ہیں خاص طور پہ ٹیلی فون موبائل سسٹم یہ بھی ورک کام کر رہے ہیں وہاں پہ؟
کچھ علاقوں میں مواصلاتی رابطے اور بجلی کا نظام معطل ہوا ہے اور وہاں پہ ملٹری اور باقی سول انتظامیہ مل کے اس کو ریسٹور کر رہے ہیں وہاں پہ, اور امدادی سرگرمیاں جو ہیں اس وقت جاری ہیں اور وہاں پہ فوری طور پہ کل تک جو ہے یہ سارا کچھ بات کر لیا جائے گا. 80% جو ریلیف ایکٹیویٹیز تھی وہ ابھی تک ہو چکی ہیں.
علی فرقان, آپ کی انفارمیشن ایک تو ریلیف ایکٹیویٹی کے ریفرنس میں اور دوسرا یہ ٹیلی کمیونیکیشن یہ نظام ابھی تک انٹیکٹ ہے, لوگ اپنے رشتہ دار عزیزوں سے بات کر پا رہے ہیں؟
جی, جو چیئرمین این ڈی ایم اے نے اپنی پریس بریفنگ میں بتایا ان میں بھی یہ کہا کہ ریسکیو کا جو زیادہ تر عمل ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور اس سے پہلے جو فضائی نگرانی کے فضائی جائزہ بھی لیا گیا تھا ان تمام علاقوں کا جہاں پہ زلزلہ سے متاثرہ جو علاقے تھے اور یہ دیکھا گیا تھا کہاں کہاں نقصانات جو ہیں وہ ہوئے ہیں. اس کے بعد ان کے مطابق زیادہ تر علاقوں میں جو اطلاعات جہاں پہ دیکھی گئی وہاں پہ ریسکیو کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے, لیکن یہ امکان بہرحال انہوں نے اس چیز کو کہا کہ موجود ہے کہ بہت کچھ علاقے ایسے ہوں جہاں پہ مواصلاتی رابطے کی وجہ سے وہاں ابھی اطلاعات نہ ہوں, اس کی وجہ سے جو ٹیمیں ہیں جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ ان علاقوں میں موجود رہیں گی اور اگر اس قسم کی اطلاع کسی بھی علاقے سے موصول ہوتی ہے तो उस तरफ उनकी जन्म जो है वो जाया जाएगा और उनको इमदादी जो काम है वो रात में जारी रखा जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो आने वाले दिन है उनमें मौसम में जो है कुछ तब्दीली आएगी और बारिशों का भी इम्कान है। इसकी को देखते हुए जो है वो टेंट और कंबल वगैरह जो है वो इन इलाकों में भिजवाए जा रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि ये जो लोग जो मुतासरीन हैं वो खुले आसमान के नीचे ना रहें इस मौसम की तब्दीली में शिद्दत में। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि दो दिन तक ये अमल जो है वो रेस्क्यू का जारी रहेगा और उसके बाद जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली और नुकसान के अदालत की तरफ।
बहुत शुक्रिया अली फुरकान, आपने हमें अपडेट किया इस्लामाबाद से। और रोशन मुगल, आप मुजफ्फराबाद से हमारे साथ हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। सामिन, हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचा सकें और ये चूँकि एक इवॉल्विंग स्टोरी है, जैसे जैसे तफसीलात आएंगी हमारे रेडियो हमारे वेबसाइट और डिजिटल चैनल्स के ऊपर आप उसकी अपडेट्स के लिए आ सकते हैं urduvoa.com के ऊपर और आपको ताज़ा तरीन वहाँ पर तफसीलात मैसर होंगी। आज का प्रोग्राम हम जहाँ रंग अपने इख्तिताम को पहुँचता है, इसके लिए प्रोड्यूसर थे अंजुम हेरल्ड गिल और मेज़बान असद हसन को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
افغانستان کئی عشروں سے تشدد کی لپیٹ میں ہے اور جاری جنگ میں لاکھوں شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کی یاد میں جو مارے گئے اور ان کے پسماندگان کی دلجوئی کے لیے مزار شریف میں حال ہی میں ایک نمائش کا افتتاح ہوا۔ وائس آف امریکہ کے میر وائز بہزان نے وہاں کا دورہ کیا اور ایک رپورٹ مرتب کی۔ تفصیلات کے ساتھ میں ہوں انجم ہیرلڈ گل۔ انسان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اکثر محض اس کا تھوڑا سا سامان ہی رہ جاتا ہے۔ نمائش میں جو افغانستان کی جنگ میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں منعقد کی گئی، ہلاک شدگان کی تصویر کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی اشیاء بھی رکھی گئی تھیں جو کبھی ان کی زندگی کا اثاثہ تھیں۔ ان میں جائے نماز، تسبیح، ان کے خطوط، کپڑے اور ایسی چیزیں شامل تھیں جو ایک طویل داستان بیان کرتی نظر آتی ہیں۔ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے ہلاک ہونے والوں کے اہل خاندان بھی جمع تھے اور ان دنوں کو یاد کر رہے تھے جب وہ ان کے ساتھ تھے اور پھر اچانک وہ اگلے جہان چلے گئے۔ ایسے ہی ایک شخص حسین توسلی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا،
سال 57 انقلاب
Back in 1978, during the Communist Party's rule, many local...
یہ سن 1978 کی بات ہے، کمیونسٹ پارٹی کا اقتدار تھا جب بہت سے علماء اور اماموں کو ان کے مدرسوں سے اٹھا لیا گیا اور ایسے مقامات پر لے جایا گیا جو انسانوں کی رہائش کے قابل نہیں تھے اور پھر انہیں نہایت ظالمانہ طریقے سے جان سے مار دیا گیا۔ ایک اور شخص سید محمد نے، جس کے اہل خانہ افغان جنگ میں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں، یوں اپنی کہانی بیان کی۔
بسیار بشدت ساعت 10 بجے شب
تقریباً 3,000 to 4,000 جنگجوؤں نے، جن کا تعلق دشمن کی فوج سے تھا، رات 10 بجے کے قریب ہمارے شہر پر حملہ کر دیا۔ ہماری سرکاری افواج نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بعض لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن جن لوگوں کو پکڑ لیا گیا وہ ہلاک کر دیے گئے۔ جمیلہ کا بھائی طالبان جنگجوؤں اور افغان نیشنل آرمی کے درمیان تصادم میں ہلاک ہو گیا۔ جمیلہ نے کہا کہ اس کی ہلاکت سے ہماری بھائی کے خاندان کا کوئی کفیل نہیں رہا۔ جمیلہ کا کہنا تھا،
11 kids, 6 of them are girls and 5
میرے بھائی کے 11 بچے ہیں، ان میں سے 6 لڑکیاں جبکہ 5 لڑکے ہیں۔ وہ اچھی زندگی گزار رہا تھا، وہ ایک کاشتکار تھا اور طالبان کے ہاتھوں اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ مزار شریف میں منعقد ہونے والی نمائش کے منتظمین کا کہنا ہے کہ کہ شہریوں کے حقوق اور ان کی زندگیاں حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ افغانستان میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے کام کرنے والے انسٹیٹیوٹ سے منسلک حسین سرمد کہتے ہیں،
امیدوار ہستیم کہ حکومت فعلی،
وی آر ہوپفل دیٹ دی کرنٹ گورنمنٹ اینڈ دی نیکسٹ،
ہمیں امید ہے کہ موجودہ حکومت اور آئندہ حکومت جو الیکشن کے بعد تشکیل پائے گی اپنی پالیسیوں میں انصاف کو اول درجہ دے گی۔ یہ کہنے کی بات نہیں کہ انصاف اور انسانی حقوق کے بغیر ایک مستحکم اور پرامن معاشرے کا قیام ناممکن ہے۔ یہاں امریکہ میں براؤن یونیورسٹی کے واٹسن انسٹیٹیوٹ نے جنگ کے اثرات پر ایک مطالعے کا اہتمام کیا جس کے مطابق صرف سن 2001 سے 2016 کے درمیان تقریباً 140,000 افغان شہری ہلاک ہو گئے۔ اس میں زخمی شہریوں اور فوجیوں کی تعداد شامل نہیں ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔